से कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौओं पर गौर करो कि ना बोते हैं और ना काटते, ना उनके खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कद्र तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतिकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा? और तुम इसकी तलाश में न रहो कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गल्ले न डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना मालो असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तुम्हारे चराग चलते रहें। तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। अगर वो रात को दूसरे या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी न होगा इब्ने आदम आ जाएगा।
पतरस ने कहा, ऐ खुदावन, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे?
खुदावन ने कहा,
कौन है वो दयानतदार और अक्लमंद दारोगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे कि हरेक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे? मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में अभी देर है, गुलामों और लौंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह न देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में शामिल करेगा। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी न की, न उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। मगर जिसने न जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा, और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज्यादा मांगेंगे। मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो हो न ले मैं क्या ही तंग रहूंगा। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि जुदाई कराने। अब से एक घर के पांच आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, दो से तीन और तीन से दो। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से।
फिर उसने लोगों से भी कहा,
जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो फौरन कहते हो कि मेह बरसेगा, और ऐसा ही होता है। और जब तुम मालूम करते हो कि दक्षिणा चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐ रियाकारो, जमीन और आसमान की सूरत में इम्तियाज करना तो तुम्हें आता है, लेकिन इस जमाने की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता? तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते कि वाजिब क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो राह में कोशिश कर कि उससे छूट जाए। ऐसा ना हो कि वो तुझको मुंसिफ के पास खींचे ले जाए और मुंसिफ तुझको सिपाही के हवाले करे और सिपाही तुझे कैद में डाले। मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज न छूटेगा।
लूका की इंजील बाब 13। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके जबीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा,
इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होंगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शलोख का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए तुम्हारी दानिश्त में यरूशलम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे।
फिर उसने ये तमसील कही,
पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया और न पाया। इस पर उस बागबान से कहा कि देख, 3 बरस में मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना।
फिर वो सप्त के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह से सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा,
ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई।
और उसने उस पर हाथ रखे